شروع کرتے ہیں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. اب دیکھیں سبحان اللہ، ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت مانگی تھی جب بی بی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے آئے تھے نا وہاں پہ، اور وہ دیکھ رہی تھی پیچھے، پوچھ رہی پہلے کہ آپ ہمیں یہاں پہ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے اوپر چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو کوئی جواب نہیں دے رہے، بالکل خاموشی ہے. پھر وہ پیچھے آئیں، سواری پہ سوار ہیں اور جا رہے ہیں، وہ پیچھے آئیں بھاگتی تھی، یا آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا؟ تو سر ہلا دیا اور فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگے چلے گئے اور حضرت بی بی ہاجرہ جو ہیں وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی، تو پھر انہوں نے یہ دعا کی تھی. بی بی ہاجرہ نے کہا تھا کہ پھر آپ شوق سے جائیں، پھر اللہ نے اگر آپ کو یہ حکم دیا تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ نے نہیں ضائع کیا. دیکھو اللہ کی خاطر جب انسان کوئی کام کرتا ہے نا، وہ سوچتا ہے ہائے پتہ نہیں میرے سے چیز چھن جائے گی، ہائے میرے سے دور ہو جائے گی، ہائے یہ دینا پڑ گیا. نہیں، اللہ لیتا نہیں ہے کبھی بھی کسی سے، وہ اس کے بدلے میں کیا کچھ دیتا ہے وہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اسی طرح سورہ ابراہیم میں بھی آیت 35 سے 37 تک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. وہاں پہ بھی انہوں نے دعا کی تھی، اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھ کو اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھ. اے میرے رب، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو آپ کے اس محترم گھر کے قریب ایک میدان میں لا بسایا ہے جو زراعت کے قابل نہیں ہیں، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز کا اہتمام کریں، تو تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھل کھانے کو دے تاکہ یہ لوگ شکر ادا کریں. یہ سورہ ابراہیم میں بھی یہی بات ہے کہ اللہ اس کو امن والا شہر بنا دے. دیکھیں اگر کسی جگہ امن نہیں نہ ہوتا وہاں پہ کوئی بھی آنا نہیں چاہتا، تو وہ ان کی کیا دعا تھی؟ یہ نہیں کہ بس ہمارے لیے یہ ہو، کوئی اور نہ یہاں پہ آئے، ہم کوئی نیکی کوئی ہوتی ہے کوئی بھلائی ہمیں ملتی نا، ہمارا اتنے دل چھوٹے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہائے کسی اور کو نہ مل جائے، بس مجھے ہی ملے. ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے اس گھر کے لیے، اے اللہ لوگ اس طرف کو متوجہ ہو جائیں. اور دیکھیں ان کی دعا ہی آج کہ لوگ بھاگے جاتے ہیں اس گھر کی طرف، اور اللہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں پہ کیوں بسایا ہے حالانکہ یہ جگہ زراعت کے قابل بھی نہیں ہے، اللہ تاکہ وہ یہاں پہ نماز پڑھے. سبحان اللہ، ربنا لیقیم الصلاۃ، اللہ تاکہ وہ یہاں پہ صلاۃ کو قائم کریں. ایسے بھی کبھی کسی کی نیت ہوتی ہے کہ کسی کو کہیں اس لیے بسائے کہ اللہ یہ تیرا گھر ہے، تیرے گھر کو آباد کرنے کے لیے، تاکہ تیرا گھر آباد ہو جائے. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ گھر بنا لیا بس کافی ہے، اس کے بعد ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. وہ اپنی اولاد کو بسائے اس لیے رہے اللہ کے گھر کے پاس کہ اللہ کے گھر میں آبادی ہے، یہاں پہ نماز کا اہتمام. کیسی ان کی دعائیں، ان کی دعاؤں سے ہی پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ کیا تھے. اللہ اس کو امن والا بنا دے، ورزق اہلہ من الثمرات، اور اللہ اس کے رہنے والوں کو بہت وافر رزق عطا فرما. رزق میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ثمرات میں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ہر چیز کے ہی پھل آ جاتے ہیں، ہر چیز کا رزق بھی ہو گیا، عمدہ رزق بھی ہو گیا. ظاہر ہے پھل تو ہیں ہی ہیں، فروٹس تو ہیں ہی ہیں، عمدہ رزق، ہر طرح کا عمدہ رزق اللہ تعالیٰ ان کو باہم پہنچا، تمام ضروریات زندگی اس میں داخل ہو گئی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں کی زمین جو تھی نا اس میں یہ فرٹائل نہیں ہے، اس میں کاشتکاری نہیں ہو سکتی. دیکھیں آپ وہاں پہ ریت ہی ریت ہے، نہ کوئی فیکٹریاں لگ سکتی ہیں. لیکن سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی دعا نسلوں تک چل رہی ہے کہ آج بھی دنیا بھر میں پیدا ہونے والی جو بھی چیزیں ہیں نا وہاں یہاں سے مل جاتی ہیں. کوئی پروڈکٹ ہے، کوئی چیز ہے، چاہے پھل فروٹ کہہ لیں، چاہے سبزیاں کہہ لیں اور چیزیں کہہ لیں، یا کوئی بھی، لوگ اسی لیے تو وہاں پہ شاپنگ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ہر دنیا جہان کی چیز وہاں پہ مل جاتی ہے، ہر چیز کا فروٹ، اس کا سمر یہاں سے دستیاب ہے. تو یہ انہوں نے دعا کی تھی، تو اللہ نے لوگوں کے دل بھی اس طرف مائل کر دیے، اللہ نے وافر دے بھی. اچھا دیکھیں ये भी उलमा ने इतनी देखे बारीकियों में गए हैं, उन्होंने फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं दुआ की कि अल्लाह यहाँ पे उग जाएं ये चीजें, अगर ये दुआ करते तो शायद इसलिए नहीं की हो कि उनकी औलाद फिर कहीं ये काश्तकारी और इसके अंदर ही ना लग जाए, ये दुआ की कि अल्लाह दे देना इनको दुनिया जहान से वहां पहुंच जाता है, वहां पे उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अच्छा अब यही दो चीजें हैं ना, एक पीस और एक प्रॉस्पेरिटी खुशहाली, यही दो चीजें हैं ना जिनकी खातिर लोग किसी जगह पे जाके बसते हैं। अब हम इन मुल्कों में क्यों आए, अक्सरियत तो इसीलिए कि अमनो अमान है, खुशहाली है, तो किसी जगह को भी आबाद करने के लिए ये दो चीजें चाहिए होती। अल्लाह ताला ने इसको अमन का गहवारा भी बना दिया और अल्लाह ताला ने वाफिर वहां पे चीजें भी दे दी। तो क्या था वो, एक वीरान बंजर जगह थी, रेतला सहरा था, डेजर्ट था बिल्कुल। अल्लाह ने वहां पे ऐसे यानी उनके सर्वाइवल के लिए देखो कैसे इंतजाम फरमा दिया, देखा फिर अल्लाह की मदद कैसे आती। वो घर आबाद ही हुआ, आज देखे उनके लिए सदका जारी ही है ना, जितने लोग भी वहां जाते हैं इस फैमिली के लिए, इन्होंने आबाद किया था इस जगह को, वो कुर्बानी ना देते तो आज ये जगह आबाद ना होती, वरना वहां पे और ऐसा क्या है, वहां पे तो पानी तक नहीं था, तो जमजम अल्लाह ताला ने इनायत फरमाया। अच्छा फिर आपको इससे क्या पता चला, एक और भी बात पता चलती है कि देखिए उन्होंने दुनिया की दुआ की है, दुनिया मांगी है ना, रिस्क मांगा है दुनिया का, अमन मांगा है यहाँ का, तो इसमें कोई हरज नहीं है कि इंसान कहे कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना था, तो अल्लाह ताला ने खुद सिखाई है दुनिया की हसना मांगने में कोई हरज नहीं, क्योंकि बाज लोग इसको बड़ा बुरा समझते हैं, हम तो दुनिया का कुछ मांगते नहीं है, बस दुनिया की सारी चीजें बुरी ही है ना, हमने घर मांगना है, ना हमने कोई खाना पीना मांगना है, ना हमने रिस्क मांगना है, ना हमने अमनो मांगना, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं, दुनिया की मांगो, कोई हरज नहीं है, पैगंबर मांग रहे हैं और अपनी नस्लों तक के लिए मांग रहे हैं, लेकिन साथ फिर आखरत भी मांग, ठीक है। तो लेकिन क्या फरमाया आगे देखिए, मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो ईमान लाए उनमें से अल्लाह पर और आखरत के दिन पर, अल्लाह उनको दे, क्यों उन्होंने ये फरमाया, पीछे देखें आयत नंबर 124 में, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया था कि मेरा अहद जालिमों के साथ नहीं है, उसमें एक इशारा ये भी था कि इब्राहिम आपकी जुर्रियत में से जालिम भी पैदा होंगे, है ना। यहाँ पे वो क्या दुआ करें, एक तो ये पता चल गया कि अल्लाह ताला ने उनके लिए जालिमों के लिए ये ऐद नहीं रखा, अल्लाह ताला ने उनको एक्सक्लूड किया, तो अब बंदगी की इंतहा देखें, आजी की इंतहा देखें कि अल्लाह फिर मुझे भी समारात किसके लिए चाहिए, जो तुझ पे ईमान लाने वाले और जो आखिरत के दिन पे ईमान लाने वाले, मैं उनके लिए ये दुआ मांगता हूँ अल्लाह उनको देना, मैं भी जालिमों के लिए नहीं मांगता। देखा आपने, तो दोनों चीजें मांगी और ईमान वालों के लिए मांगी जो अल्लाह और आखिरत पे ईमान रखते हैं। अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया, आला फरमाया वा मन कैफरा, और जिसने कुफर भी किया, जो कुफर करे वा उमत्तेउहू कलीलन, उसको भी मैं दूंगा तो सही मता, थोड़ा सा उसको भी फायदा तो दूंगा, लेकिन फिर क्या, इन द एंड क्या, सुम्मा अतरुहू इला अज़ाबिन नार, फिर मैं मजबूर कर दूंगा उसको आग के अजाब की तरफ। यानी क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि जो काफिर भी होगा, आपने तो दुआ मांगी है ना अल्लाह सिर्फ ईमान वालों को देना, उनको ही समरात मिले, उनको ही अमन मिले, अल्लाह ताला फरमाते नहीं, मैं ऐसा नहीं है कि उनको मैंने दुनिया नहीं देनी, वो तो इमामत की बात थी ना वहां पे, तो अल्लाह ताला ने फरमा दी जालिमों को इमामत नहीं दूंगा, लेकिन ये कौन सी बात है, ये है रिस्क रोजी की, दुनिया की फायदों की, अल्लाह ताला ने फरमाया वो मैं दूंगा, इसलिए कि इमामत और चीज है, हिदायत और चीज है, और दुनिया के ये माश खाना पीना ये सब चीजें ये और चीज है, असल नेमत तो वही है, ये तो दुनिया में बरतने की चीजें हैं, जाहिर अल्लाह ताला ने इम्तिहान लेना है तो इम्तिहान के लिए आप देखें, एक कोई कमरा इम्तिहान भी होता है, कागज पेंसिल भी दी जाती है, कुर्सी मेज भी दी जाती है, देते हैं ना स्टूडेंट को, ये नहीं कहते तुमने फेल होना है इसलिए तुम्हें कुछ नहीं देंगे, देते हैं, तो बाद में उस जो एग्जाम करेगा जैसा करेगा उसके ऊपर उसका रिजल्ट है, लेकिन अभी एग्जामिनेशन हॉल में सब चीजें सबको बराबर मिल रही हैं, तो जिसने कुफर किया उसको भी मैं फायदा दूंगा। ले यहां पे कलीलन से ये मत समझिएगा कि थोड़ा सा फायदा दूंगा उसको, मैंने ज्यादा दौलत नहीं देनी, ये नहीं है मतलब, ये मतलब बिल्कुल नहीं है। कलीलन का मतलब ये है यहाँ पे कि मैं उसको थोड़ा फायदा दूंगा, यानी ये दुनिया का फायदा जो है ना ये थोड़ा सा ही है, ठीक है। हो सकता है उसको बेशुमार दौलत अल्लाह ताला दे दे, बेशुमार दौलत, दुनिया की सारी दौलत दे दे, लेकिन याद रखो वो भी तो कलील है, आखरत के मुकाबले में क्या है दुनिया, कितनी थोड़ी है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली समुंदर में डाल के निकाली थी तो जितनी उंगली पे पानी लग गया, ये दुनिया है, ये दुनिया की जिंदगी है, और आखरत ये समुंदर के बराबर है। तो फिर इसके फायदे कितने होंगे, ज्यादा के थोड़े? इसका तो सब कुछ भी किसी को मिल जाए ना तो वो थोड़ा ही है। इसीलिए फरमाया कि मैं उसको भी दूंगा थोड़ा सा फायदा, उसको भी मिलेगा, यानी यहाँ का ये फायदा जो सारा है ये थोड़ा ही है, ये मैं उसको भी दूंगा। हदीस में आता है, हदीस गौर से सुनिए कितनी प्यारी हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जिस तरह तुम इंसानों में रोजी तकसीम फरमाई है ना, इसी तरह अखलाक भी तकसीम फरमाया। अल्लाह दुनिया तो सबको देता है, उनको भी देता है जो उसके महबूब है, और उनको भी देता है जिनको वो पसंद नहीं करता। क्या पता चला, दुनिया किसको देता है? सबको देता है, उनको भी जो उसके महबूब है और उनको भी जिनको पसंद नहीं करता। तो आप देखिए आज कितनी तरक्की है, जो मुशरिक हैं, जो वो हैं, कभी इंसान सोचता है, दुआएं लोग सवाल भी करते हैं, देखिए इनको क्यों इतना मिला हुआ है, इनको तो मिलना ही नहीं चाहिए, हैरान होते हैं, ये तो अल्लाह को मानते नहीं है, फिर ये कैसे इतनी तरक्कियां कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ तो इनको ही, इनके पास ही है। तो बात ये है, अल्लाह सबको देता है, इस हदीस से पता चला दुनिया सबको देता है। ये इस चीज का पैमाना नहीं है कि अल्लाह ने किसी को पसंद किया है या ना पसंद किया, सबको देता है। आगे हदीस को सुने, लेकिन दीन पे चलने की तौफीक सिर्फ उनको देता है जिनसे उसको मोहब्बत होती है। सुभान अल्लाह, तो जिसको दीन मिल जाए ना समझो वो अल्लाह का महबूब है। अगर आपको दीन मिल जाता है तो समझ लो अल्लाह ताला के प्यारे हैं आप। अगर आपको दुनिया की तरक्कियां मिल रही हैं तो उसको ये ना समझ लो कि मैं अल्लाह की प्यारी हूं या नहीं प्यारी हूं, वो इस चीज का कोई क्राइटेरिया नहीं। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। तो फिर अल्लाह की मोहब्बत की क्या निशानी? दीन मिल जाए। ये है कि जब अल्लाह ताला किसी से भलाई का इरादा करता है तो उसको दीन की समझ देता है। ये नहीं है दुनिया, दुनिया तो सारों को दे रहा है, वो काफिर को भी देता है। ओके, अल्लाह ताला के नजदीक इस दुनिया की कीमत एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अगर एक हदीस में आता है कि अगर एक मच्छर के पर के बराबर भी अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की अहमियत होती तो वो किसी काफिर को एक घूंट पानी भी ना देता। लेकिन ये अल्लाह के नजदीक इतनी हकीर है, मच्छर कितना छोटा है, उसका पर सोचें कितना हकीर हुआ, नजर भी नहीं आता उसका तो पार हमें कभी, इतनी भी नहीं अहमियत है। ये नहीं कहा कि इसके बराबर है मच्छर के बराबर, दुनिया की कीमत इसके बराबर भी होती यानी इतनी भी नहीं है, तो अल्लाह ताला एक घूंट पानी भी ना देता। लेकिन उसने इतना कुछ दिया हुआ, इतना कुछ दिया हुआ इसलिए कि उसके नजदीक कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी बेकार रद्दी चीज है, उसने सबको दे दी, उनको भी दे दी जो उसको नहीं मानते, जो शेयर करते हैं। तो ये तो कलील है, ये थोड़ी सी, इससे कोई धोखा ना खाए कि फलां को मिली हुई है और फलां को क्यों मिल गई और देखो वो अल्लाह के प्यारे ही होंगे जो उनको इतना मिला हुआ। नहीं, ये नहीं है क्राइटेरिया, ये सब थोड़ा है। इसीलिए एक रिवायत आती है, मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, हदीस है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब आप अपने मोमिन बंदों को कलील दुनिया क्यों देते हैं, थोड़ी उनके पास बेचारे गरीब होते हैं कभी कहीं, देखे ना बस ऐसे ही गुजारे लायक ही। तो मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत दिखाई, उन्होंने अर्ज किया, ऐ मेरे रब तेरी अजमत और तेरे जलाल की कसम, अगर एक आदमी के दोनों हाथ और दोनों पांव कटे हुए हों और उसको पैदाइश के दिन से लेके सारी उम्र चेहरे के बल घसीटा जाए, सुन रहे हैं आप, एक आदमी के दोनों हाथ और दोनों पैर कटे हुए हो और जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन से मरने के दिन तक उसको चेहरे के बल सारी जिंदगी घसीटा जाए, लेकिन उसका अंजाम ये जन्नत हो, ये घर और इसकी नेमतें हो, तो इस आदमी का हाल यह है, गोया उसने कभी कोई तकलीफ देखी नहीं। गोया उसको सब कुछ मिल गया, उसको सब मिल गया, सब मिल गया। फिर उन्होंने अर्ज किया, ए मेरे रब, आप अपने साथ कुफर करने वाले बंदे को इतनी फरावी, इतनी दुनिया क्यों अता करते हैं? तब उनको जहन्नुम दिखाई दी। उन्होंने अर्ज किया, ए मेरे रब, अगर दुनिया में काफिर पैदाइश के दिन से क्यामत तक जिंदा रहे ना, क्यामत तक, ये 60-70 साल की जिंदगी नहीं, क्यामत तक जिंदा रहे और ऐश करता रहे, लेकिन उसका अंजाम अगर ये होगा तो उसका हाल ये जैसे उसको कभी कोई भलाई मिली नहीं, उसने देखी नहीं। ये मुस्नद अहमद की रिवायत। तो इनसे धोखा ना खाया करें, हम बहुत जल्दी डिसहार्ट हो जाते हैं, वो देखो उनको इतना मिला हुआ, ये है वो है, हमें कुछ नहीं मिला, हम अल्लाह के मानने वाले, और एक तो हमारे अपने ही अमाल कुछ इस काबिल नहीं है, उनको इसलिए नहीं मिला के वो बहुत लायक थे और हम नालायक हैं, नहीं, उनको भी अल्लाह ने इम्तिहान के लिए दिया, हमें भी इम्तिहान के लिए दिया, और यहाँ पे अल्लाह सबको देता है, चाहे कोई उसको माने या ना माने। देखिए ये आपके सामने दलील है आयत, और मन कफर उम्मती कलीलन, लेकिन फिर उसके बाद क्या है, अतरहु इला अज़ाबिन नार, फिर मैं उसको आग की तरफ, आग के अजाब की तरफ घसीटूंगा, उस तरफ मजबूर करूंगा। तो फिर उसने क्या क्या फायदा हुआ उसको इस दुनिया का, जो कुछ उसको मिला था, बताएं कितनी भी मिल गई तो क्या वो कलील नहीं थी? कहां वो 60-70-80-100 साल की चलो जिंदगी, और कहां कभी ना खत्म होने वाला वक्त आग में कटना, आप उसको कामयाब कहेंगे क्या? वो बेसल मसीर, और बहुत ही बुरी लौटने की जगह, जिसको अल्लाह पाक फरमा दे ये बुरी लौटने की जगह, तो वो कितनी बुरी जगह। व इज यरफाउ इब्राहिम अल कवाइद मिन अल बैत व इस्माइल, और जब बुलंद कर रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम इस घर की फाउंडेशन के ऊपर, बुनियादों के ऊपर तामीर कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, दीवारें बुलंद कर रहे थे, इससे क्या पता चलता है कि ऑलरेडी वहां पे बुनियादें थी। ऐसा नहीं है कि बुनियादें इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई नया ही घर वहां पे बनाया था, बुनियादें ऑलरेडी थी, उन्होंने सिर्फ उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट किया। इसीलिए मैंने आपको जो बात बताई है ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि फिर अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि यहाँ पे ये अल्लाह के घर को तामीर किया जाए, इसका हदूद अरबा जो था कि किधर डायमेंशंस होंगी, क्या होंगी, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बता दिए गए थे। तो जब उन्होंने खुदाई की तो नीचे से बुनियादें निकल आई थी, फिर उन्होंने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, तो ये घर अल्लाह का घर कहा जाता है जो हिस्ट्री में है कि 10 टाइम्स तामीर हुआ। सबसे पहले इसको फरिश्तों ने बनाया था, ये सबसे पहला घर था अल्लाह का जमीन के ऊपर, फिर आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, फिर शीस अलैहिस्सलाम ने, फिर तूफान नूह में ये गिर गया था, तो उसके बाद फिर ये गिरा ही रहा था, मतलब यहाँ पे एक टीला सा था, तो लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि कोई अल्लाह का घर बनाओ। इसके बाद फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, फिर कौम अमालका ने, फिर जुरहम कबीले ने, फिर कुसई बिन कलाब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद अमजद में से हैं उन्होंने, फिर कुरैश ने, आप याद है आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले की बात है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चादर के अंदर हिजरे असरफ अस्वद रख के और फिर लेके गए थे और वहां पे लगाया था, फिर अब्दुल्ला बिन जुबैर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, फिर हज्जाज बिन यूसुफ। ठीक है, ये उन्होंने इस तरह से जब इसकी बुनियादों पे तामीर कर रहे थे वो, तो उस वक्त वो क्या कह रहे थे, ये काम करते हुए नेकी का काम करते हुए साथ साथ दुआएं कर रहे हैं, क्या दुआ कर, रब्बना तकब्बल मिन्ना, ए हमारे रब तू हमसे कबूल कर लेना। दोनों मिलके दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह हमसे कबूल कर लेना। सुभान अल्लाह, इससे हमें क्या पता चलता है, बहुत गहरी बात है इसमें। देखिए एक तो ये पता चला कि ये इतनी मुशक्कत का काम है, देखिए इट्स नॉट इजी कोई जगह पे कंस्ट्रक्शन करना, और वो भी दो लोगों, सिर्फ कोई उनके पास एक मजदूरों की फौज तो थी नहीं, दो लोग थे सिर्फ। उन्होंने ये नहीं कहा अल्लाह तूने मुझे इमाम बना दिया, अब मैं ये भी काम करूं, इतनी मुशक्कत वाला काम, मैं बूढ़ा आदमी हूं और मैं इतनी मुश्किलों का काम करूं, ना मेरे पास कोई चीजें हैं, कोई क्रेन नहीं है, कोई उठाने के लिए चीजें नहीं है। नहीं, इमाम है लेकिन अपने हाथों से काबतुल्लाह की तामीर कर। अच्छा, फिर दूसरी बात देखिए, तामीर करते हुए क्या कह रहे हैं, ए अल्लाह हमसे कबूल कर, ये कौन बंदा कहेगा? ये वही इंसान कह सकता है कि जिसको ये फिक्र लगी हो कबूलियत की, अल्लाह पता नहीं कबूल हो कि ना हो, देखें, एक बंदा जिसको बहुत जोम हो कि मेरे पास तो बड़ी नेकियां हैं और मैंने इतना कुछ किया है, मैंने इतनी कुर्बानियां दी, मैंने फलां किया, हम तो छोटी छोटी नेकियां करके ही सोचते हैं ना, अब और हमने क्या करना है, हमने तो सारा कुछ ही कर लिया। वो इतनी नेकियां करके भी, इतनी कुर्बानियां दे के भी काबातुल्ला की तामीर करें तो कह रहे हैं कि ए अल्लाह, इसको हम, इस काम को, इस अमल को हमसे कबूल कर लेना। उनको कबूलियत की कितनी फिक्र लगी हुई, उनको तो ये नहीं होना चाहिए था इसके बाद कि इतनी आजमाइशों, इतने इम्तिहानों से गुजरने के बाद और इतनी बड़ी सआदत पाने पे कि मैं अल्लाह का घर बना रहा हूं, उनको तो फखर होना चाहिए था, उनका तो सर फखर से बुलंद होना चाहिए था। लेकिन इतनी आजी से दुआ करें, हमारे लिए इसमें क्या सबक है? दरख्त जितना फल से लदा होता है ना, उतना ही आजी से झुका होता है। जो जितने बड़े मर्तबे पे होता है ना, वो उतना ही आजिज और इंकसारी वाला होता है। ये अंबिया देखें, सारी खिदमात करके भी, कुर्बानियां दे के भी, वो क्या बता रहे हैं? हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ ना, हम तेरा हक कभी अदा कर ही नहीं सकते। हक तो वो है कि जो कभी अदा हो ही नहीं सकता। ए अल्लाह, हम तो ये कह रहे हैं कि तू हमारी इस खिदमत को कबूल कर लेना, इसकी इल्तजाएं कर रहे हैं। और हम जो खाली हाथ बैठे हुए, मुतमईन बैठे हुए, और इज्जत इंकसारी तो बिल्कुल नहीं होती, खास तौर पे अगर जरा सा भी कोई नेकी का काम कर लेना। अब तो हम कुरान पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, अब क्या, अब तो हमारे मर्तबे ही बहुत बुलंद हो गए, अब तो हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं, अब और क्या करें? नमाज रोजे हम कर लेते हैं, कुरान हम पढ़ रहे हैं, अब और क्या करना है हमें? कभी ये भी फिक्र होती है इसकी कबूलियत की कि पता नहीं कबूल हो कि ना हो। आपको पता है ना, कुरान में कई जगह पे हमें ये बताया गया हफ्ते अमाल के बारे में, कि अमाल के जाया होने के बारे में, हबितत अमाल अब, कि उनके अमाल जाया हो गए, तो अमाल तो जाया भी हो जाया करते हैं। हाँ, हमें ये भी पता है कि कहीं कोई बड़ाई का एहसास आ जाए, कोई तकब्बुर आ जाए, कोई कुछ आ जाए, तो अमल कबूल ही नहीं हो। और वो देखें, तकब्बल बाब तफाउल से, बाब तफाउल में जिन्होंने ग्रामर पढ़ी हुई है उनको पता है क्या होता है, मुशक्कत, मेहनत से काम करने का माना होता है ना, चाहे उसमें रुकावटें भी हो। तो कितनी मेहनत का वो काम कर रहे हैं, कितनी मुशक्कत से काम कर रहे हैं, फिर भी ये एहसास है। तो हमारे लिए कितना बड़ा क्या कि हम चाहे कितना ही मुश्किल काम कर रहे हो तो इसके ऊपर इतने ना फूल जाएं कि मैंने यही बहुत बड़ा काम कर लिया कि मैं अल्लाह की फरमा बरदारी कर रही हूँ, हालांकि देखो ना मुझे कितनी मुश्किल आ रही है, कितनी रुकावटें आ रही हैं, फिर भी मैं कर रही हूँ, तो अब इसके ऊपर इतनी बड़ी बन के बैठ जाए, नहीं, कितनी मेहनत से किया हुआ काम, मगर फिर भी फिक्र रहनी चाहिए, अल्लाह मुझसे कबूल कर लेना, पता नहीं इसमें कितनी कमियां रह गई हूं, अल्लाह मेरा काम इस काबिल तो नहीं है कि आपके सामने पेश हो, कि खुद तेरे दरबार में शर्फे कबूलियत इसको मिल जाए। परवरदिगार, तू तो सारी कमियों के बावजूद इसको कबूल कर ले, तो ये फिक्र होनी चाहिए। लेकिन ये उसी को हो सकती है जिसको, जो अपनी नेकियों को बहुत काउंट ना करता हो और उनपे फखर ना करता हो, और उसको नेकियों पर अपनी बड़ाई का जोम ना हो, तकब्बर ना हो अपनी नेकी का, वो ही ये फिक्र करता है, वो ये सोचता है अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी तो मुझे बहुत करना है, वो ही नेकी करके उसकी कबूलियत की फिक्र करता रहता है। फरमा रहे इन्नका अंत समीउल अलीम, है अल्लाह तू ही है, तू सुनने वाला है हमारी दुआओं का, इनका हमारी इल्तजाओं का सुनने वाला है, तू जानने वाला भी है जो हमारे दिलों में। सोचिए, अगर इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के घर की, खाना काबा की तामीर करते हुए ये दुआ मांग रहे हैं, हमें कितनी इस चीज की फिक्र करनी चाहिए। तो फरमाया इन्नका अंत समीउल अलीम, यानी तू ही है सुनने वाला, इसमें जो मैंने आपको बताया था ना हसर का माना, यानी तू ही अकेला है, कोई को कि हम भी सुनते हैं, जानवर भी सुनते हैं और हशरात भी सुनते हैं, लेकिन देखिए जो अल्लाह ताला का सुनना है ना और हमारे सुनने में बहुत फर्क है। अल्लाह ताला जो सुनता है तो वो सिर्फ इंसान की जाहिर बात को, आवाज को नहीं सुनता, उसके दिल की बातों को भी सुनने वाला है, उसकी इल्तजाओं को भी सुनने वाला है, और जानने वाला भी है। तू ही अकेला, तेरे अलावा कोई ऐसा जानने वाला नहीं है।